भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो सही सर्वसुराध्यक्षो यसुरद्विद्गुहाशयः तन्मूला देवता सर्वाः नेश्वरा सचतुर्मुखाः अयं वै तद्वधोपायो यदृशीनां विहिंसनम् स हि सर्वसुराध्यक्षो ह्यसुरद्विद्गुहाशयः तन्मूला देवता सर्वाः सेश्वरा स चतुर्मुखाः अयं वै तद्वधोपायो यदृशीनां विहिंसनम् निसंदेह सर्वसुर अध्यक्षः सारे देवताओं का अगुवा, अगुवा मतलब नेता ही निसंदेह असुरद्विट असुरों का शत्रु गुहाशयः हर एक हृदय के भीतर का परमात्मा तत्मूलः उसके चरण कमलों में शरण लेकर देवताः सारे देवता जीवित है सर्वः वे सभी स ईश्वराः शिव समेत स चतुर्मुखाः तथा चार मुखों वाले ब्रह्मा भी अयम यह है वै निसंदेह तत् वध उपायः उसके विष्णु के मारने का एकमात्र उपाय यत् जो ऋषीनाम ऋषियों मुनियों अथवा वैष्णवों का विहिंसनम सभी प्रकार के दंड द्वारा दमन अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु असुरों के परम शत्रु है और इसीलिए वे असुर द्विट कहलाते हैं वे सारे देवताओं के अगुआ है क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा समेत सारे देवता उन्हीं के संरक्षण में रह रहे हैं बड़े बड़े ऋषि साधु तथा वैष्णव भी उन्हीं पर आश्रित रहते हैं अतः वैष्णवों का उत्पीड़न करना ही विष्णु को मारने का एकमात्र उपाय है ऐसे किसने प्रस्तुत किया ये बात? कंस के मंत्रियों ने। एवं दुर्मतीर मंत्री भी ही, आगे के श्लोक में आया है, एवं इस प्रकार मंत्रियों ने सलाह दी। कैसे मंत्री? दुर्मतीर, इनकी मति भ्रष्ट हो चुकी थी, दुर्बुद्धि वाले कंस के जो सलाहकार भी थे वे उन मंत्रियों ने एवं इस प्रकार सलाह दी। और भी कई बातें पहले कही गई है, ये उनके अंतिम वचनों में से या प्रस्तावों में से एक बात यहां पर हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तात्पर्य, देवता तथा वैष्णव जन भगवान विष्णु के विशेष रूप से अंग है, क्योंकि वे उनकी आज्ञा का सदैव पालन करते हैं। ओम तद् विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। कंस के असुर अनुयायियों ने सोचा कि यदि वैष्णवों, साधु पुरुषों तथा ऋषियों को सताया जाएगा तो विष्णु का मूल शरीर सहज ही नष्ट हो जाएगा। इस तरह उन्होंने वैष्णववाद का दमन करने का निश्चय किया। असुरगण नहीं चाहते थे कि वैष्णववाद फैले, इसलिए वे वैष्णवों को निरंतर सताते रहते रहने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वैष्णवजन एकमात्र भक्ति का प्रचार करते हैं, वे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं देते, क्योंकि यदि कोई अपने को भवबंधन से छुड़ाना चाहता है तो अंततो गत्वा उसे वैष्णव बनना होगा। हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इसी ओर उन्मुख है, इसीलिए असुरगण इसे दबाने में सदैव लगे रहते हैं। स हि सर्वसुराध्यक्षो यस्सुरद्विन्गुहाशयः तन्मूला देवता सर्वाः सेश्वरा स चतुर्मुखाः अयं वै तद्वधोपायो यदृशीनां विहिंसनम्। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु असुरों के परम शत्रु है, और इसलिए वे असुर द्विट कहलाते हैं। वे सारे देवताओं के अगुआ है, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा समेत सारे देवता उन्हीं के संरक्षण में रह रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि, साधु तथा वैष्णव भी उन्हीं पर आश्रित रहते हैं। अतः वैष्णवों का उत्पीड़न करना ही विष्णु को मारने का एकमात्र उपाय है। तो जब उस दुर्गा माता ने कहा कि तुम्हारा वध करने वाला तो और कई जन्म ले चुका है, मुझे क्यों हे पगले, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसा कह के संकेत दे के दुर्गा देवी वहां से कंस के समक्ष जो प्रकट हुई थी, कंस के कारागार में ही, वहां से वो अदृश्य हुई। फिर वैसे कंस ने खूब क्षमा याचना भी मांगी। किनसे? वसुदेव और देवकी से, उनके चरणों को छू छू कर क्षमा मांग रहे थे और उनको मुक्त भी किए जो बेड़ी हथकड़ी लगाए थे। और निकल पड़े वहां से। फिर उन्होंने एक विशेष सभा बुलाई, इमरजेंसी पार्लियामेंट की बैठक बुलाई। सभी मंत्री आ गए, सभी खासदार आमदार आ पहुंच गए। तो उस मंत्रियों के सभा में, उस संसद भवन में, कंस ने अपना अनुभव कहे सुनाया। उसने क्या देखा क्या सुना, और उसमें ये बात उसने कही कि और मुझे मारने वाला तो और कई जन्म ले चुका है। इसे मैंने उस देवी से सुना, जिस बालिका की हत्या का जब मैंने प्रयास किया, आठवीं तो पुत्री हो गई, पुत्र नहीं हुआ, और उसी की हत्या करने के लिए मैं जब तैयार था, तो उस देवी ने, उस देवी का रूप धारण करके उसने मुझे सुनाया कि मेरा वध करने वाला तो और कई जन्म ले चुका है। तो ये बातें जब मंत्रियों ने सुनी तो वह अपने राजा को सांत्वना दे रहे हैं और प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कई सारे वचनों से, जिसमें उस आठवें पुत्र या जहां भी जन्म लिया है वध करने वाला, कंस का वध करने, उसी का हम वध करते हैं। वध उपायः अयम वै वध उपायः। आहा, हमारे पास उपाय है, हम ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? ऋषीनाम यद ऋषीनाम भी हिंसनम। चलो, ऋषि मुनियों का वध करते हैं। वो आठवां पुत्र आपका वध करने वाला हाथ में लगता है नहीं लगता है कोई चिंता नहीं, हम ऋषि मुनियों की हत्या करेंगे, वध करेंगे, तुलसी के साथ उसका भी वध होगा जो आपका वध करने के लिए जन्म ले चुका है। ऐसा प्रस्ताव है इन मंत्रियों का। तो जिनका वध करना है उनका वर्णन सुनाते हुए ये दूरमतीर जो दुष्ट मंत्री है वे कह रहे हैं, वैसे उनको भी साक्षात्कार, उनका भी साक्षात्कार है। ये भगवान कैसे हैं जिनका वध करना है हमें? सही सर्व सुर अध्यक्षः स वह ही निश्चित ही सर्व सुर अध्यक्षः, सारे सुरों के अध्यक्ष तो वही है। ही सुर असुर द्विड गुहाशयः, असुर द्विड पुनः ही आ गया, ही निश्चित ही, जैसे वे सही निश्चित, वे निश्चित ही सब सुरों के अध्यक्ष है, उसी प्रकार ही निश्चित ही श्लोक चला गया भाई। यह असुर द्विट, वे कैसे हैं असुरों के शत्रु है असुर द्विट, सुरों के अध्यक्ष और असुरों के शत्रु है वे। गुहाशयः, और गुफा में रहते हैं। कौन सी गुफा में रहते हैं? हृदय नाम की गुफा में, हृदय नाम की गुफा में वे रहते हैं। वहां पर वैसे जीवात्मा भी रहता है, तो हम वैसे गुफा में रहते हैं। हिमालय की गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जहां भी है अंदर जाओ। अंतर्मुख होने से हम कहां पहुंच जाएंगे? गुफा में पहुंच जाएंगे। गुहाशयः, हरे के हृदय के भीतर परमात्मा के रूप में रहने वाले भगवान, मतलब गुहाशयः, गुहा के वे आश्रय है, गुहा के वे निवासी है, गुफा के वे निवासी है। तन्मूला देवता सर्वाः, और वे मूल है आदि है। अहम आदिर ही देवानाम, मैं देवताओं का आदि हूं, मैं देवताओं का मूल हूं। अहम प्रदहा प्रजहा ना पिता, अहम बीज, अहम बीजहा, अहम बीजहा, मैं बीज हूं। भगवान कहते बीज मूल जड़ जो सभी की है। तन मूला देवता सर्वाहा, सभी देवताओं के ये बीज है, मूल है, जड़ है, आश्रय है। उन देवताओं के भी जो बड़े बड़े जिनके नाम है, उनके भी स ईश्वराहा, तो शिव के समेत, शिव के भी जो आश्रय है, शिव के जो भी जो मूल है, शिव भी जिनके चरणों की मस्तक धूलि अपने मस्तक पर लगाते हैं, चढ़ाते हैं, स से ईश्वरा, स चतुर्मुखा हा, और चतुर्मुखी ब्रह्मा के भी वे अध्यक्ष है, आश्रय दाता है, मूल है, आदि है। तो ऐसा परिचय उस भगवान का दे के अब वे कह रहे, अयम वै तद वधूपायो। हा हा, ऐसे व्यक्ति का जिसका वर्णन अभी कर चुके हैं, अयम ही सर्वसुराध्यक्षो यसुरद्विट गुहाशयः तन्मूला देवता सर्वाः सईश्वरा स चतुर्मुखाः। ये परिचय दिया, ये सारे एडजेक्टिव्स विशेषणों का प्रयोग करते हुए उस भगवान का परिचय दे के उन्होंने क्या कहा, अयम वै तद वध उपायो, उसके वध का उपाय तो यही है। क्या है? अयम, अयम उपाय वै मतलब निश्चित ही, जैसे ही मतलब निश्चित, वै मतलब अयम वै तद वध उपायो, उसके वध का एक उपाय है। हाँ क्या है, क्या है उपाय बता तो दो। ऐसे कंस ने उत्कंठित होकर कहा, आ क्या उपाय है? यद ऋषीनाम विहिंसनम, ऋषियों की हत्या करो। जो भी ब्रजमंडल में ऋषि मुनि है, भक्त है, हरे कृष्ण वाले भी अभी पहुंच गए हैं, उनकी क्या करो? हम क्या करें? हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप तो स्वामी हो, आपका आदेश, बस हम तो आपके किंकर है, आपके आदेश आदेश की प्रतीक्षा है, कहिए, जस्ट ऑर्डर अस, हम तो तैयार बैठे हैं। तो प्रस्ताव भी वे स्वयं ही कह रहे हैं और उस पर अमल करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। ऋषियों का दमन करो, हिंसा करो, उनको पीड़ित, वैष्णवों का उत्पीड़न करना ही विष्णु को मारने का एकमात्र उपाय है, अपने आप मर जाएगा। अहम भक्तो पराधीनः, वे उन पर आश्रित है, ये तो हमने कह दिया, लेकिन वो विष्णु भी वैष्णवों पर आश्रित है, वैष्णवों के अधीन है। हृदयो मह्यम, साधु नाम हृदयम मह्यम, भगवान ने कहा साधु नाम हृदयम मह्यम, और फिर उसके उल्टा, मतलब भगवान कह, मेरे हृदय में साधु का निवास है और साधुओं के हृदय में मेरा निवास है, गुहाशया, जो यहां कहां है, भगवान स्वयं कहे हैं भागवतम में वचन है। संतों का निवास, साधुओं का निवास मेरे हृदय में, वे रहते हैं और उनके हृदय में मैं रहता हूं। गोविंद विश्राम, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारा हृदय मतलब हे वैष्णव, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ये दासे करुणा करी, तो तुम कैसे वैष्णव हो, तुम्हारे हृदय सदा विश्राम, किसका, गोविंद तो विश्राम करते हैं और उनको कोई विश्राम करने नहीं देता है, और उनके हृदय में भी है लेकिन वो परेशान करते रहते हैं, प्रभु जी सुख संपत्ति घर अभी तक पूरी नहीं आई है, कुछ तो भेज दी आपने, उसके लिए हम आपके आभारी है, लेकिन काफी सारा तो बाकी है, माल आना बाकी है। तो इस प्रकार और तो परेशान करते रहते हैं, निंदिया उड़ाई, नींद भगवान की खुल जाती है जब, अन्य लोग मांग करते रहते हैं, धनम जनम सुंदरीम की, तो लेकिन वैष्णवों के हृदय में तो विश्राम करते हैं, वैष्णवों के प्राण है, वे एक दूसरों के प्राण है, मत प्राण मेरे प्राण है, या उनका प्राण मेरे लिए मेरी सेवा में है, यत चित्ता मदगत प्राण, मत चित्ता, उनका चित्त किन में है, मुझ में है, मेरे भक्तों का चित्त मुझ में है, मत चित्ता मदगत प्राण गया अर्पित, मदगत प्राण समर्पित है, उनका प्राण मदगत प्राण मेरे चरणों में, तत् मूला देवता की बात हो गई। तो भगवान भी भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं, भक्तानाम मानवर्धन कहा, एवे यश घुषुक त्रिभुवान, तो अपने भक्तों की गौरव गाथा फैलाने में भगवान स्वयं ही पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर बन जाते हैं, जो अपना नाम फैला रहा है तो उसको फैलाने दो, पवार और कंपनी को, उसमें भगवान का कोई लेकिन तुकाराम का नाम उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, अपना पोस्टर नहीं छपा, तुकाराम महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, वो भगवान का ही नाम का डिंडोरा पीटते रहे जीवन भर, अपने लिए तो समय ही नहीं था, एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया अपने नाम जय घोष के लिए। तो ऐसे भक्तों का भक्तानाम मान वर्धन, मान सम्मान वर्धन बढ़ाने का कार्य स्वयं भगवान करता है। भगवान ने कहा भागवतम में भक्तानाम मान वर्धन, तो ये कंपटीशन चलती रहती है, भक्त और भगवान के बीच में कंपटीशन, प्रतियोगिता, एक दूसरों का गौरव बढ़ाते हैं, एक दूसरों का सम्मान करते हैं, एक दूसरों के प्राण जीवन जो है, तो एक को मारो तो दूसरा मर जाएगा। एक बेचारी स्त्री का मुझे याद आ गया, यूरोप की स्वीडन, आई थिंक स्वीडन, उसका कुत्ता मर गया, उसका मर गया कुत्ता, तो फिर उसने अपनी भी जान ले ली, अपना प्रिय कुत्ता, उसने सोचा जीना तो क्या जीना कुत्ते के बिना, अब कुत्ता ही नहीं रहा, तो विरह के मारे बेचारी ने आत्महत्या कर ली। बिग हेडलाइंस अखबारों में समाचार आया था। तो जिसमें प्रेम है उसको कष्ट देंगे तो प्रेम करता, प्रेम करने वाला भी दुखी होगा, जिसमें प्रेम है उसको उसकी मृत्यु मारा ही जाएगा तो वो स्वयं भी मर जाएगा जो प्रेम करता है उसमें। ये विचार, ऐसा प्रस्ताव, दोनों का घनिष्ठ गहरा संबंध, विष्णु और वैष्णव का बीच का जो संबंध है उसको भली भांति जानते थे, हम समझ रहे हैं यहां उनके प्रस्ताव से, वचनों से, इतना तो जानते थे। दुर्बुद्धि इसीलिए कि वो उनको मारने का प्रयास कर, इसीलिए दुर्बुद्धि, नहीं तो ज्ञान तो है, विज्ञान ठीक नहीं है, उस ज्ञान का उपयोग किस लिए करते हैं, भगवान को मारने के लिए, भगवान का ज्ञान तो कुछ है। और वैष्णव और भगवान के बीच का जो स्नेह प्रेम है उसको भी, वो भी समझ है, लेकिन इसको समझ के दूसरों दोनों को मारना चाहते, एक को मारेंगे तो दूसरा भी मर जाएगा, ऐसा मैं समझ रहा। तो यहां तो कहे हैं ऋषि नाम भी हिंसनम, पहले के दो जो श्लोक आपने पढ़े उसमें तो और भी नाम दिए हैं, मूलम भी विष्णुर देवानाम यत्र धर्म सनातन तस्य ब्रह्म गो विप्र तपो यज्ञा सदक्षिणा। तस्माद इसलिए सर्वात्मना राजन, हे राजा मतलब कंस, ब्राह्मणान, हम हत्या किसकी करेंगे, या तो ऋषि का नाम लिया है लेकिन और भी नाम गिनाए हैं पहले के दो श्लोकों में, ब्राह्मणान ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों की हत्या करेंगे हम, तपस्विनो तपस्वियों की हत्या करेंगे, यज्ञशीलान जो यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा संसिद्धि हरितोषणम, हरि की विष्णु के तोषण तुष्टि के लिए जो यज्ञ करते हैं उनकी भी हत्या हम करेंगे, गाश्च गायों की भी हत्या करेंगे हम, गायों का वध करेंगे, हनम हनमो हनम हविर्दुघा, गाय की हत्या करेंगे तो यज्ञ भी बंद हो जाएंगे, यज्ञ के लिए क्या चाहिए? घी चाहिए। तो घी ही प्राप्त नहीं होगा तो यज्ञ बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार हन महा हम मारेंगे, हम सारे मिलके, सारे मंत्री, आप नहीं हो, संकेत कर, वयम हन महा, हम लोग मारेंगे उनके नाम लिए, इनको 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 हम मारेंगे। आगे के श्लोक में और भी नाम लिस्ट को और बढ़ा रहे हैं। विप्रा, विप्रों को, विप्र कौन होते हैं? वेद पाठात भवेद विप्रा, जन्मना जायते शूद्रः, और फिर संस्कारात भवेद द्विजः। वेद पाठात, वेद पाठ से विप्र होते हैं, वेद पाठ जो पढ़े हैं, विप्र बड़े पंडित जो होते हैं, विप्र। गावाश्च, पुनः गाय का नाम ले रहे, वेदाश्च, वेदों को भी समाप्त करेंगे। तपः, सत्यम, दमः, शमः, श्रद्धा को हम मिटाएंगे। किसी की धर्म में आस्था है, श्रद्धा है, तो हम उसका समूल नाश करेंगे। दया, तितिक्षा, ये जो गुण है उनका विनाश करेंगे हम। कृतवश्च हरिस्तनुः, और कहते ये तो सारे भगवान के विभिन्न अंग है, उनके गुण है या वैष्णव है ये, तो इन सब का, तो इनकी हत्या, इनका विनाश करने से ये हरि की तनु ही होने के कारण, ये हरि का अंग या हरि के अवयव होने के कारण, इनकी हत्या से हरि अपने आप मर जाएंगे। तो हुआ, तो इतना समझने के उपरांत श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वर्तमान काल या स्थिति की ओर, ये नहीं कि 5000 वर्ष पूर्व ही ऐसा प्रयास किया गया भगवान की हत्या, तो लक्ष्य था, तो उनकी हत्या कैसे होगी? वैष्णव की हत्या करो, ऋषि नाम भी हिंसनम, और भी नाम लोग, इनकी इनको समाप्त करो, तो अपने आप विष्णु समाप्त हो जाएंगे। तो ये प्रयास केवल 5000 वर्ष पुराना ही नहीं था, ऐसा प्रयास आज भी हो रहा है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी ओर उन्मुख है, इसलिए असुरगण इसे दबाने में सदैव लगे रहते हैं। फिर बंबई में या जर्मनी में या अमेरिका में, कई स्थानों पर प्रभुपाद अपने अनुभव की बात लिख रहे हैं, या जब ये तात्पर्य लिख रहे थे उस वक्त भी कोई परेशानियां जो महसूस हो रही थी, जिससे विदित थे प्रभुपाद ही अगुआ नेता रहे, सेनापति भक्त रहे इस हरे कृष्ण आंदोलन के, तो उनको सारे समस्याओं का समाचार तो उनके पास तो पहले पहुंच जाता था। तो उन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जैसी जैसी आवश्यकता है उसको उल्लेख करते हैं प्रभुपाद, जैसे यहां पर कर रहे हैं। वह जमीन ले ली हरे कृष्ण लैंड, तो उसका बहुत बड़ा मामला कोर्ट कचहरी शुरू हुई कई सालों तक। प्रभुपाद स्वयं ही लॉयर बन गए और गिरिराज महाराज और तमाल कृष्ण महाराज को मार्गदर्शन करते रहे कैसे फाइट करना है। अपने लॉयर को कई सारे मंत्र देते थे, समझा ऐसे कहो ऐसे कहो। प्रभुपाद हर क्षेत्र में निपुण थे, तो कोर्ट कचहरी को हम लोगों को थोड़ी लड़ने आती थी, प्रभुपाद सारा बताते थे कैसा कहो। लॉयर को ही पता नहीं चलता था लॉयर को क्या कहना चाहिए ताकि वो हमारा प्रतिनिधि के रूप में मुकाबला करे मिस्टर नायर के साथ, मिस्टर एम एम जो एन लिखा होता है क्या एन एन। तो प्रभुपाद लीलामृत के रचयिता सस्वरूप दास गोसाई महाराज थोड़ा युक्ति पूर्वक सावधानी से नाम को एन एन ही कहते गए लिखते गए। तो एन stands for was a liar, he was a liar। तो मुंबई में सारी समस्याएं और भी जर्मनी में समस्या। हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया हमारे भक्तों ने और जर्मन सरकार हमारा सारा संकीर्तन कलेक्शन उनको देना पड़ रहा था। अच्छी बात नहीं है ना, कॉन्फिस्केशन कॉन्फिस्केट ऐसा प्रयास। इसीलिए उस जर्मनी को भक्तों ने नाम दिया दैत्य स्थान। जर्मनी का हम लोग अनऑफिशियली नाम क्या रखे हैं, दैत्य स्थान। इसीलिए विदेश में पहली स्थापना बड़े नरसिंह भगवान की स्थापना कहां पर हुई, जर्मनी में, जियड नरसिंह क्षेत्र उसको नाम दिया जियड नरसिंह क्षेत्र। फिर अमेरिका में भी कई सारी समस्याएं, ब्रेन वॉशिंग, ये स्वामी जी आए हैं हमारे देश तो वहां के सारे पेरेंट्स एकत्रित होके उन्होंने केस की, प्रभुपाद को ही लक्ष्य बनाया। और केस किस बात की, ब्रेन वॉशिंग, हमारे पुत्र पुत्रियों का के दिमाग को साफ कर दिया इस स्वामी ने, साफ कर दिया ब्रेन वॉशिंग। तो उसकी भी काफी लड़ाई कचहरी में हो रही थी न्यूयॉर्क के न्यायालय में। प्रभुपाद ने तो प्रचार किया जैसे नारद मुनि प्रचार करते थे, तो कौन नाराज हो गए, दक्ष नाराज हो। फिर दक्ष की परंपरा में आने वाले जो पेरेंट्स, अमेरिकन पेरेंट्स भी नाराज हो गए। तो प्रभुपाद तो कह रहे थे आपके ब्रेन वॉशिंग कह रहे हैं ना, आपके पुत्र पुत्री का मैंने क्या किया, ब्रेन वॉश किया, तो ब्रेन जो मैंने वॉश किया उसका थोड़ा पैसा तो मुझे दो, वॉशिंग का काम किसने किया, मैंने वॉशिंग किया, वॉशिंग आपने उसको डर्टी किया था, ब्रेन को आपने डर्टी किया, मैंने क्या किया, वॉशिंग किया। ये भी कोई केस होती है क्या? तो आभार नहीं मान रहे हो आप, मुझे केस कर रहे हो। तो प्रभुपाद हम लोग उस केस को जीते गरीब हो। तो वो समाचार में से 77 का जो गौर पूर्णिमा उत्सव उस समय समाचार पहुंच गया, भक्त जब आए मायापुर न्यूयॉर्क अमेरिका से तो समाचार लेके आए थे, उसकी चर्चा और कॉन्वर्सेशन सारा रिकॉर्डेड है, आप उसको पढ़ भी सकते हो और अखबारों में समाचार भी आ गए कैसे हम लोग उस केस को जीते। तो अंततो गत्वा तो वैष्णवों की जीत होती है, विष्णु की ही जीत होती है, से हम लोग कल भी कह रहे थे, राम की ही जीत, राम का ही विजय होता है, और किसी का विजय होता ही नहीं है संसार में, संभव भी नहीं। तो लेकिन भगवान को, विष्णु को मारने का प्रयास तो असुर गण करते ही रहते हैं, पूरे सारे प्रयास असफल रहेंगे, लेकिन प्रयास तो असुर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार करेंगे, अब भी कर रहे हैं। हमारे देश में भी, भारतवर्ष में, भारत भूमि जिसको कहते, पवित्र भूमि, जहां क्या होती है, गंगा और जमुना जहां बहती है, उस देश के हम वासी तो है, लेकिन अब गंगा तो सारा प्रदूषण चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का सारा केमिकल्स एंड बाय प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं गंगा में, जमुना में, लगभग नष्ट हो गई। दिल्ली तो हुआ जमुना के तट पर ही है, हम लोग दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली जाते तो बीच में केवल नदी जमुना ही है, लेकिन वहां का आचमन करने का भी प्रश्न नहीं है। दिल्ली में जमुना जल से आचमन कोई करेगा तो मरेगा, वो जीवित नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति है। तो इस किलिंग जमुना, जमुना का नाश विनष्ट करने का ये आधुनिक सभ्यता प्रयास कर रही है, उसी से बनते सारे टेलीविजन, मोबाइल्स और क्या क्या, फैक्ट्री इंडस्ट्री का ही तो सारा ये बाय प्रोडक्ट है, दूसरा बाय प्रोडक्ट पहुंच रहा है जमुना में, गंगा में। जमुना की रक्षा नहीं, गंगा की रक्षा नहीं, गाय की रक्षा नहीं, यहां गाय की हत्या हो सकती है। कई साल पहले की बात है, आपके चुने हुए नेता, सांसद, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद भवन में एक चर्चा का विषय, टॉपिक, एजेंडा ये था कि हमारे देश के जो कत्तल खाने हैं, स्लॉटर हाउसेस है, उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए, उसका आधुनिकीकरण होना चाहिए, हमें कुछ विदेश से कुछ मशीन इंपोर्ट करनी चाहिए। हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स को बड़ी दया आ रही थी, गायों के प्रति दया। प्रस्ताव के अंतर्गत ये बात थी कि अब जब गाय काटी जाती है तो हमारे जो मशीन्स है, हथियार है, वो झट से नहीं काटते गाय को, गाय कटती कटती कुछ मिनट लगते हैं तो गाय बड़ी परेशान होती है। इसीलिए अगर हम अपने कत्तल खानों का आधुनिकीकरण करेंगे, विदेश से कुछ ऐसे यंत्र सामग्री लाएंगे, उन्हें बहुत तरक्की की है विदेश में, तो हमारी गाय को भी मरते समय कष्ट नहीं होगा। तो जो फेवर में हाथ ऊपर करे, तो मेजॉरिटी ने हाथ ऊपर किए, प्रस्ताव पास हुआ। आप समझ रहे हो, सांसदों की गाय पर दया, अच्छा किया ना, अच्छा किया कि नहीं, हाँ। तो ऐसे राजा परीक्षित ने क्या किया था आप जानते हो, राजा परीक्षित ने जब देखा कोई गाय को परेशान कर रहा है, राजा परीक्षित ने क्या किया, अपनी तीक्ष्ण मॉडर्न तलवार से, शार्पन्ड सोर्ड से, उसी के टुकड़े करने के लिए राजा परीक्षित तैयार हुए थे। लेकिन ऐसा विचार हमारे सांसदों के दिमाग में नहीं आया। उन्होंने सोचा कि हाँ हाँ, इस प्रस्ताव के अनुसार अगर हमारे कत्तल खान ने अगर हम इक्विप करते हैं यूरोप अमेरिका के हथियारों से, मशीन से, तो हम गाय पर मेहरबानी, कुछ दया, कुछ कृपा ही कर रहे हैं। तो ये भी वही प्रयास है। तो हमें कंस के दूरमती मंत्रियों को दोष देने की क्या आवश्यकता है? आज के भी मंत्री तो उसी प्रकार के माला के मणि जो है। तो ये स्थिति और गंगा और गाय की हो सकती तो फिर और बातों की कल्पना ही कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी आए दिल्ली मंदिर के उद्घाटन के समय, तो उन्होंने ऐसी कुछ बात कहे सुनाई, उपस्थित प्रेस और जो अतिथि गण थे उन्होंने करताल ध्वनि से अभिनंदन और स्वागत किया। वो बात तो बढ़िया थी, अटल बिहारी वाजपेयी अभी अभी प्रधानमंत्री बने थे, शायद ये पहला ही उनका पब्लिक फंक्शन था, दिल्ली मंदिर, राधा पार्षदी मंदिर का टेंपल ओपनिंग। तो उन्होंने बात कही कि इस देश को अगर किसी चीज का विश्वीकरण कहे या ग्लोबलाइजेशन, हर देश अपने अपने किसी वस्तु को, विचारों को, प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज करता है, जैसे अमेरिका कोका कोला या मैकडॉनल्ड या फ्राइड चिकन, इसको ग्लोबलाइज, या लाइक पिज्जा हाउस, ऐसी कई सारी बातें वैसे है। तो इन्होंने कहा कि हाँ, हमारे देश को भी भगवत गीता को ग्लोबलाइज करना चाहिए, भगवत गीता के ज्ञान को हमें ग्लोबलाइज करना चाहिए, मतलब जहां तहां उपलब्ध कराना चाहिए इस भगवत गीता के ज्ञान को। तो सभी ने तालियां तक खूब पीटी, लेकिन उसके बाद तक कुछ भी नहीं सुना हमने, वो बात वही रह गई। तो इस देश में या सारे संसार भर में कई सारे एजेंट्स, एजेंसीज है, जो उनका लक्ष्य तो ये जो कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस और गॉडली जो पीपल, लोग है, धर्म है, धर्म का विनाश हो, धर्म का विनाश हो और अधर्म की जय हो, ऐसी से नारे तो नहीं लगाते, लेकिन प्रयास तो उसी उद्देश्य से होता है। किल गॉड, भगवान को मारो गोली, ऐसी सभ्यता बन रही है। प्रभुपाद कहा करते थे कि आजकल की सभ्यता क्या चाहती है, किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड। गॉड का किंगडम, गॉड का सब संपत्ति वैभव तो हमें प्राप्त हो, हमको प्राप्त हो, लेकिन वहां कौन नहीं होना चाहिए, भगवान नहीं होना चाहिए। और भगवान की आवश्यकता भी तो क्या है, ईश्वर हो अहम, मैं कौन हूं, ईश्वर तो हम है, और दूसरे भगवान की क्या आवश्यकता, ईश्वरो अहम, फिर अहम भोगी, अहम सुखी, ये सब आसुरी संपदा का वर्णन भगवान किए हैं। तो स्वयं भगवान कहे है, फिर साइंटिस्ट भी है, बड़े बड़े वैज्ञानिक, आप कहते कि भगवान है तो दिखा दो भगवान को, तभी हम स्वीकार करेंगे आपका भगवान है। आपका भगवान घर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तुम्हारे भगवान इतने सस्ते नहीं है कि तुम्हारे समक्ष में खड़े हो जाए या तुम उनको देख पाओगे। तो ये सारे टेक्नोलॉजी सब यांत्रिकीकरण कंप्यूटराइजेशन वगैरह वगैरह जो सब चल रहा है, इसका उपयोग वैसे हम लोग कृष्ण भावना के प्रचार प्रचार और प्रसार के लिए जरूर कर सकते हैं, और हरे कृष्ण आंदोलन कर भी रहा है, लेकिन जिस प्रकार की हमारी भावना होगी उसके अनुसार हम ज्ञान का भी या हथियारों का भी उपयोग करते हैं। चाकू तो वही है, तो एक व्यक्ति उसका उपयोग किसी का गला काटने के लिए भी कर सकता है और दूसरा व्यक्ति ऑपरेशन में डॉक्टर्स उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे हरे कृष्ण भक्त उसी से सब्जी काटेंगे, उसे बाहर काट रहे हैं चाकू से या नाइफ। तो दिमाग भावना किस प्रकार की है उस पर निर्भर रहता है, उसके अगल बगल में इर्द गिर्द जो भी संपत्ति है, व्यक्ति है, विचार, उसका वो कैसे उपयोग करेगा, अपने लिए कि भगवान के लिए। असुर अपना सोचता है और सुर भगवान के संबंध में सोचता है। और इसी चर्चा के अंतर्गत फिर सेक्युलर स्टेट भी आ जाता है, सेक्युलरिज्म, सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता। इसकी परिभाषा के अनुसार स्टेट एंड रिलीजन को सेपरेट करना उसको सेक्युलर कहते हैं। सरकार या सब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, धर्म को हटाया। उद्देश्य तो था जब हम स्वतंत्र होंगे तो क्या करेंगे, राम राज की स्थापना करेंगे। जैसे ही स्वतंत्र हो गए, हमारे पहले प्रधानमंत्री ने घोषित करना प्रारंभ किया, ये जो डैम्स है हमारे देश के, जो डैम्स अलग अलग डैम्स का उद्घाटन करने जाते थे, फैक्ट्री का उद्घाटन करने जाते थे, कोई ब्रिज बन रहा है तो कहते थे कि दीज आर आवर टेम्पल्स, ये रामराज हो गया। तो यू टर्न, जिस उद्देश्य से इस देश को स्वतंत्र किए, कईयों ने अपनी जाने दी, जान कुर्बान, क्योंकि देश स्वतंत्र हो के स्वतंत्र देश में हम अपने संस्कृति और धर्म पर अमल करेंगे। लेकिन 1950 में तो कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया इस देश ने या देश के सांसदों ने, और बहुत बड़ा परिवर्तन ये था कि सेक्युलर बना दिया स्टेट को, जैसे विदेश के ज्यादातर स्टेट्स सेक्युलर स्टेट्स, नेपाल नहीं है और कुछ अरेबिक कंट्रीज भी सेक्युलर नहीं है, लेकिन कई सारे स्टेट्स देश सेक्युलर बन रहे हैं, धर्म को हटाया जा रहा है, लोग राज को चलाएंगे, सरकार को चलाएंगे, लेकिन उनको कोई बताएगा नहीं, कोई धर्मज्ञ, कोई विद्वान, कोई संत, जिसे तुकाराम भी तुकाराम सलाह देते थे, रामदास का, रामदास और तुकाराम मिलके शिवाजी को, उनका भी अष्ट प्रधान मंडल जैसी व्यवस्था थी, सलाह लेते थे और फिर राज करते थे। तो ऐसा कोई नहीं रखा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, भगवान ने कहा हाँ हाँ, इसको तो पहले जो जानते हैं जानने वाले तो राजर्षि ही होते, एवं इस परंपरा में इस प्राप्त इस ज्ञान को, लेकिन ऋषि नाम यहां का राजर्षयो विदुः, राजा ऋषि के जब बात को सुनेगा तो राजा का राजर्षि होगा, सेंटली किंग होगा। लेकिन ऋषि नाम विहिंसनम, ऋषियों की हत्या करेंगे, ऐसा प्रस्ताव है तो वह फिर वो कहां पढ़ेंगे, कहां समझेंगे परंपरा प्राप्तम। तो इस प्रकार कई सारी एजेंसीज धर्म के विनाश के लिए, विरोध के लिए कार्यरत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। प्रभु हमारे साथ है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, भविष्य कुछ उज्जवल सा ही है भगवत भावना का, कृष्ण भावना का। भगवान जो चाहते हैं ये आंदोलन फैलता ही रहे, कहां तक, नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइ भई मोर नाम। तो ये तो होके ही रहेगा। तो भगवान का कोई विरोध नहीं कर सकता, प्रयास जो हम कह रहे हैं, कल भी कहे आज भी कहे, प्रयास करेंगे असुर लोग, लेकिन सफलता तो विष्णु को वैष्णव को ही मिलेगी। यत्र योगेश्वरो यत्र पार्थो धनु तत्र श्री और विजयो और भूतीर और नीतीर, हाँ नीतीर मतीर मामा, तो चार बातें वहां होगी। श्री संपदा, श्री और फिर विजय होगा, संपत्ति होगी, लक्ष्मी होगी और विजय होगा। श्री विजयो भूति, विशेष शक्ति का प्रदर्शन भी होगा, जैसे प्रभुपाद के साथ या संबंध में हुआ। भगवान विशेष शक्ति भूति विभूति नहीं देते प्रभुपाद को, एम्पावर नहीं करते, नहीं तो वैसे 70 साल का बूढ़ा और निर्धन और मित्रहीन, नो फ्रेंड्स नो मनी एन ओल्ड मैन, क्या कर सकता है। लेकिन जो करके दिखाया कैसे, भूतीर भगवान की विभूति से, और नीति वहां नीति भी होगी, नीति के नियम के अनुसार नियम को पालन होगा। जहां अर्जुन जैसे धनुर्धारी भक्त योद्धा भक्त, और कृष्ण योगेश्वर योगेश्वर, तो ये जोड़ी जहां है, ये कॉम्बिनेशन जहां पर है वहां होगा, वहां होगी श्री विजय भूति नीति मतीर मामा। ऐसे संजय ने अपना निष्कर्ष सुनाया। तो संसार की वर्तमान स्थिति को देखकर हमें हताश उदास होने की आवश्यकता नहीं है, हमें इस गीता के वचनों को ध्यान में रखते हुए अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए। और परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन की जय हो, वो साधारण जय नहीं, कैसी जय, परम सुप्रीम विक्ट्री। तो कुछ विक्ट्री तो हम देख ही रहे हैं पुणे में, अब इतनी बड़ी संख्या में कल भी थे आज भी प्रातःकालीन सत्र में पहुंचे हो। ये क्या है? जीत ही तो है, ये धर्म की संकीर्तन आंदोलन की जीत ही है। नासिक से फोन आया कल ट्रैवलिंग पार्टी का, पुणे की पार्टी पहुंच चुकी है, उन्होंने 52,000 रुपीज वर्थ ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे वाह, तो ये तो जीत है। ये बुक्स मतलब क्या है? केवल बॉम्ब्स नहीं, टाइम बॉम्ब्स। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो क्या करेंगे? एक्सप्लोड होंगे, कोई आज तो कई कोई कल परसों। हाँ, हृदय के मल को, आसुरी प्रवृत्ति को क्या करेंगे? भस्म सात कुरुते ही तथा भस्म, राख बनाएंगे। तो भगवान के साथ कोई टकरा नहीं सकता जहां भगवान और भगवान के भक्त हैं। विजयस्तु पांडुपुत्रानाम ईशाम पक्षे जनार्दन। विजय तो किसका होगा? पांडुपुत्रों का ही होगा। विजयस्तु पांडुपुत्रानाम, क्यों? उनके पक्ष में कौन है देख लो, कौन है? जनार्दन जो है, आंख बंद करके भी कोई बता सकता है। और उनके पक्ष में कौन है? जनार्दन। बस हो गया, कोई चिंता का विषय नहीं है, जीत निश्चित है। तो हम भगवान के पक्ष में रहेंगे, चैतन्य महाप्रभु के पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, राम के पक्ष में, तो जीत निश्चित है। मतलब कृष्ण भावना फैलेगी और इसी में सारे संसार का कल्याण है। वैसे जिसकी पराजय, जिसका पराजय होगा भी उसकी भी जीत ही है, ये विशेषता है। एक प्रकार से हम सभी का पराजय हुआ, पराजित होके हम लोग, धर्म की जीत हुई, संकीर्तन आंदोलन की जीत हुई, आप लोगों का पराजय हुआ, आपने शरण ली चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, हाँ कि ना? तो कुछ आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं हुआ, सुधार हुआ? या अंग्रेज लोगों ने हम लोगों को, भारत के लोगों को गुलाम बनाए थे 150-200 वर्षों तक, फिर प्रभुपाद गए इंग्लैंड तो कृष्ण भावना का प्रचार किए, तो कई सारे इंग्लिश मैन एंड लेडीज ऑल्सो, उन्होंने क्या किया? वो गुलाम बन गए, लेकिन किसके गुलाम बन गए? कृष्ण के गुलाम बन गए। उन्होंने हम मनुष्यों को गुलाम बनाया था, मनुष्यों ने मनुष्यों को गुलाम बनाया था, लेकिन कुछ इंग्लिश मैन लेडीज अब किसके गुलाम बन रहे? कृष्ण के गुलाम बन गए। तो वो आभार मान रहे प्रभुपाद, थैंक यू प्रभुपाद, यू मेड अस सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, स्लेव्स ऑफ कृष्णा, फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा आल्सो। तो यहां का पराजय भी, अब धीरे धीरे क्या होगा, कृष्ण भावना फैलेगी देश विदेशों में, तो वहां दूसरे धर्म के, जिसको कहते हैं, वैसे धर्म तो एक ही है, सभी का धर्म एक, सभी जीवों का एक ही धर्म है, सभी जीवों का एक ही धर्म है, भागवत धर्म या सनातन धर्म। कुछ लोग जहां तहां इस पृथ्वी पर मानते हैं हम दूसरे धर्म के, ये अज्ञान है। वैसे किसी भी जीवात्मा का और कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म, धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का प्रेरित निर्मित धर्म ही धर्म कहलाता है, कोई मनुष्य नहीं बना सकता। तो भगवान ने तो भागवत धर्म सनातन धर्म को जब से सृष्टि बनी है तब से बना के रखा ही है। अब नए धर्म की आवश्यक है ही नहीं, नया धर्म। अगर हम सनातन हैं तो हमारा धर्म भी सनातन होना चाहिए सभी जीवों का। तो कुछ नाम जो हम सुन रहे हैं, ये धर्म फलाना, वो धर्म अमुक तमुक, तो आने वाले हजार दो हजार वर्षों में क्या होगा? उनका जन्म हुआ है इसीलिए उनका क्या होगा? मृत्यु भी होगी। जिस धर्म का जन्म हुआ है उस धर्म की ये स्वाभाविक है, लेकिन सभी जीवों का जो धर्म है भागवत धर्म सनातन धर्म, इसका जन्म उदय नहीं हुआ इसीलिए इसका अंत भी नहीं होगा। वो धर्म तो बना रहेगा सभी जीवों का, जहां भी है जिस देश में है वह, तो उस मूल शाश्वत सनातन धर्म को पुनर्जीवित जागृत किया जाएगा। ये धर्मांतर तो नहीं हुआ, मूल धर्म को जगाया जाएगा। और जिसको मत या फेथ को लेके बैठे हैं उसी को धर्म कह रहे हैं, तो वो अदृश्य होगा, समाप्त होगा। तो इस प्रकार परम विजयते श्री कृष्ण आंदोलन की, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की जीत होती रहेगी। किसी के साथ किसी के पराजित पराजय नहीं हो रहा है किसी का, सभी की जय हो, सभी की जय होगी, सभी की जीत होगी। कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण महाराज। महाराज, परीक्षित महाराज ने जो कली को तलवार निकाला लेकिन मारा नहीं, तो वॉज इट ए रॉन्ग डिसीजन ऑफ परीक्षित महाराज? क्या मार देते तो ज्यादा अच्छा होता है?
क्षमा दंड देने से भी ऊंचा धर्म का अंग माना जाता है। दंड तो कोई भी दे सकता है लेकिन क्षमा सभी नहीं करते। तो राजा परीक्षित ने अपनी क्षमा का प्रदर्शित किया। लेकिन जैसे कली काल का तो प्रारंभ होना ही था, अलग अलग काल मतलब अलग अलग सीजन्स प्रभुपाद कहते हैं, समर सीजन या रेनी सीजन, तो ये सत्य युग एक प्रकार का सीजन है, और फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कल युग। तो भगवान अपने धाम लौटे तो कल युग तो प्रारंभ होने का समय, द्वापर के अंत में, तो किसी न किसी को निमित्त बनने की आवश्यकता थी ताकि कली मैदान में उतर आए। तो यह राजा परीक्षित बने हैं निमित्त, जिनको तुम दोष दे रहे हो या सोच रहे हो कि ऐसा करते तो अच्छा। सर्प दंश दंश से ये व्यक्ति मरेगा, जिसने भी ये कृत्य किया है। मेरे पिताश्री के गले में सर्प जो पहनाया है, तो ये समाचार जब पहुंचा, राजा परीक्षित ने ये बात जब सुनी, तो कोई कह सकता है कि राजा परीक्षित उसको मार सकते थे, मारना चाहिए था जिसने भी ऐसा शाप दिया। श्रृंगी ऐसी क्षमता तो वह रखते थे, स्वयं भी बलवान, सशक्त शस्त्र और कितनी सारी सेना, सम्राट जो थे, लेकिन वहां पर भी उन्होंने बर्दाश्त किया, सहन किया, स्वागत किया, तो अपने सद्गुणों का ही प्रदर्शन किया वहां पर भी। लेकिन वहां अगर कुछ कदम उठाते राजा परीक्षित, कौन है और ब्राह्मण पुत्र मुझे श्राप देने वाला, अभी दिखाता हूं अपनी तलवार से, उस मूड में आ जाते तो फिर भागवत की कथा भी नहीं होती, फिर हम कोई भागवतम प्राप्त नहीं होता। तो भागवतम तो प्राप्त हुआ हम लोगों को, और साथ साथ कली की प्राप्ति हो गई। तो राजा परीक्षित इस प्रकार कारण बने हैं, भागवत कथा के भी कारण बने हैं, और कली को आश्रय देके कली को कुछ चढ़ावा बढ़ावा भी देने के कारण बने हैं। लेकिन इसके पीछे वैसे भगवान का हाथ है, भगवान की इच्छा है, कलियुग का प्रारंभ होना है, समय आ चुका है कली का, कली काल का। तो राजा परीक्षित ने जो भी किया, भगवान ने जैसे भी उनको प्रेरणा दी उसके अनुसार ही किया है। तो भागवतम भी तो है, कली भी है और साथ में भागवतम भी है। कलौ नष्ट दृशामीशाम, कलौ नष्ट दृशामीशाम, कली भी उत्पन्न हुआ। कली ने क्या किया, लोगों की दृष्टि को नष्ट किया, लेकिन कहा है अधुना पुराण अर्क उदिता, अभी अभी तो जब कली प्रकट हुआ उसने अंधेरा फैलाया, तमगुण से लोगों की दृष्टि को नष्ट किया। तो भगवान ने क्या व्यवस्था की, पुराण अर्क उदिता, उदय हुआ किसका, भागवतम का। पुराण, पुराण मतलब भागवत पुराण, अर्क मतलब सूर्य जैसा चमकने वाला तेजस्वी भागवतम उदित हुआ। कि दोनों की कंपटीशन में, कलयुग के कंपटीशन, कलयुग और भागवतम के कंपटीशन में जीत किसकी होगी, भागवतम की। तो भगवान दिखाएंगे अपने भागवतम का महात्म्य, महत्ता ऐसे समझाएंगे वे। तो केवल कली ही उत्पन्न नहीं हुआ, साथ में भागवतम की भी रचना हुई है, भेंट मिली है हम लोगों को। और